नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मणिपुर में विकास के लिए शांति सर्वोपरि। उन्होंने सभी संगठनों से अपने सपनों को पूरा करने और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए शांति के मार्ग पर चलने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम के आइजोल में बैरबी सेरांग नई रेल लाइन सहित 9000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्वोत्तर देश का विकास इंजन बन रहा है। प्रधानमंत्री ने 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों सेरांग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सेरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सेरांग कोलकाता एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। कर्नाटक के हासन जिले में गणपति विसर्जन जुलूस में एक टैंकर के टकराने से 9 लोगों की मौत। रूस के कैमचटका क्षेत्र में 7.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी की गई। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी हांगकांग ओपन के फाइनल में पहुंची और मुक्केबाजी में जैस्मीन लेम्बोरिया और नुपो श्योरान ने ब्रिटेन के लिवरपूल में विश्व चैंपियनशिप के महिला वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिजोरम की राजधानी आइजोल में 9000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। श्री मोदी ने 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बैरबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जो पहली बार मिजोरम की राजधानी को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
51 किलोमीटर से अधिक लंबी बैरावी सेरांग रेलवे लाइन के उद्घाटन के साथ मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। मिजोरम और देश के बाकी हिस्सों के बीच सीधा रेल संपर्क इस क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित, कुशल और किफायती यात्रा प्रदान करेगा। इसके अलावा यह खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की समय पर और विश्वसनीय आपूर्ति भी सुनिश्चित करेगा। इस रेल लाइन की शुरुआत होने से गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर के बाद भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला आइजोल चौथा पूर्वोत्तर राजधानी शहर बन गया है। इससे व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। रेल संपर्क और ट्रेन सेवाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आइजोल से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन देश और विशेष रूप से मिजोरम के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि अब मिजोरम के किसान तथा कारोबारी देश भर के अधिकतम बाजारों तक पहुंचेंगे और इन विकास योजनाओं से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
This is not just a railway connection, but it is a lifeline of transformation. It will revolutionize the lives and livelihoods of the people of Mizoram. Farmers and businesses of Mizoram can reach more markets across the nation.
प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर देश का विकास इंजन बन रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की एक्ट ईस्ट नीति और पूर्वोत्तर आर्थिक गलियारे में मिजोरम की प्रमुख भूमिका है।
मिजोरम हैज अ मेजर रोल इन बोथ अवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड द इमर्जिंग नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर विद कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एंड सेरांग हुमांग बुचई हुआ रेल लाइन। मिजोरम विल ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू द बे ऑफ बंगाल थ्रू साउथ ईस्ट एशिया।
श्री मोदी ने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार हाल ही में लागू किए गए हैं और इससे उत्पादों पर लगने वाले कर कम होंगे, जिससे परिवारों का जीवन आसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 नई एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें सेरांग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सेरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सेरांग कोलकाता एक्सप्रेस शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के सभी संगठनों से अपने सपनों को साकार करने और बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए शांति के पथ पर चलने का आग्रह किया। वे आज मणिपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
मणिपुर की ये धरती, ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा इस शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं।
प्रधानमंत्री ने आज मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की 19 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक जीएसटी सुधारों की अगले पीढ़ी की घोषणा की। आज हम कर मुक्त वस्तुओं के लिए सुधारों पर एक नजर डालते हैं। एक रिपोर्ट।
अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने कई आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया है। नए ढांचे के तहत सब्जियां, फल, मेवे और जूस जैसी वस्तुओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। वहीं नमकीन, भुजिया और मिक्सचर पर भी 12% की जीएसटी की दर से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा कैंडी, टॉफी, जेली जैसी वस्तुओं पर भी जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। एक किराना दुकानदार सुरेश ने बताया कि सरकार ने आगामी त्योहारी सीजन से पहले लोगों को बड़ी राहत दी है।
पहले 18% जीएसटी था सो उसको आज 12% कर दिए, 5% था सो जीएसटी उसको जीरो कर दिए। आज तेल, साबुन, पेस्ट, घी, तेल सभी को 5% कर दिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा चमत्कार है।
जीएसटी दरों में कटौती से दैनिक आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतें कम होंगी जिससे इनकी खपत और मांग भी बढ़ेगी। इसके अलावा लगभग सभी खाद्य उत्पादों की कम कीमतों से जीवन यापन में भी आसानी होगी। देश भर के लोग जीएसटी में हुए इस बदलाव का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि जीएसटी में कमी से परिवारों पर आर्थिक दबाव कम होने की संभावना है। नई कर दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत ने 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी का दावा हासिल कर लिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय तटरक्षक ने बताया कि इटली के रोम में आयोजित 4थे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक परमेश शिवामणि के नेतृत्व में भारतीय दल ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में 115 देशों और संगठनों ने वैश्विक तटरक्षक सहयोग पर चर्चा की। वर्ष 2027 में चेन्नई में तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन के साथ ही भारतीय तटरक्षक स्वर्णिम जयंती मनाई जाएगी जिसमें बेड़े की समीक्षा और विश्व तटरक्षक संगोष्ठी होगी। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन पंजाब के रूपनगर जिले में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए आज राज्य के दौरे पर हैं। वे समीक्षा बैठक से पहले सतलुज नदी के पास के प्रभावित गांवों का दौरा करेंगे और बाढ़ पीड़ितों से भी मिलेंगे। इससे पहले उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री बनवारी लाल वर्मा ने कल गुरदासपुर और लुधियाना के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया था। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी उनके साथ थी। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस संकल्प को दोहराया कि केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में पंजाब के साथ है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, बंगाल, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और विदर्भ में भी तेज बारिश की चेतावनी दी है। कर्नाटक के हासन जिले में गणपति विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस में एक टैंकर लॉरी के टकरा जाने से 9 लोगों की मौत हो गई। मौसले होसल्ली में एक टैंकर लॉरी ने लापरवाही से गणपति विसर्जन जुलूस में टक्कर मार दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने प्रत्येक परिवार को 5,00,000 रूपये का मुआवजा देने की घोषणा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रूस के कैमचटका क्षेत्र के पूर्वी तट के पास आज सुबह तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.4 मापी गई। भूकंप के बाद कैमचटका क्षेत्र के स्थानीय अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। पूर्वी अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंपों के बाद संयुक्त अरब अमीरात की सहायता पोत 2,500 टन मानवीय सहायता लेकर रवाना हुआ। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के निर्देश के बाद ये पोत अबुधाबी से रवाना हुआ। ये सहायता वैश्विक स्तर पर तत्काल मानवीय जरूरतों को पूरा करते हुए क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के संयुक्त अरब अमीरात के मूल्यों के अनुरूप है। सहायता के इस खेप में 84 मीट्रिक टन आपातकालीन सहायता लेकर दुबई से काबुल के लिए रवाना हुआ। इसमें बोइंग 747 मालवाहक विमान भी शामिल है। इस विमान को भूकंप से प्रभावित लगभग 7,30,000 लोगों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। और अब खेल जगत से ताजा खबरें लेते हैं निखिल कुमार से।
लवलीन सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय खिलाड़ियों ने आज सुबह सेमीफाइनल में चीनी ताइपे के चेन चेंग कुआन और लिन बिंग वेई को 21-17 21-15 से हराया। खिताबी मुकाबले में अब उनका सामना विश्व की नंबर 3 जोड़ी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से होगा। और अगर हम पुरुष सिंगल सेमीफाइनल की बात करते हैं तो आज शाम लक्ष्य सेन का सामना चीनी ताइपे के चोउ तिएन चेन से होगा। लक्ष्य ने कल क्वार्टर फाइनल में भारत के ही आयुष शेट्टी को 21-16 21-13 से हराया था। इस बीच एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में लवलीन श्रीलंका आज अबुधाबी में शेख जायद स्टेडियम में ग्रुप बी में बांग्लादेश के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। बांग्लादेश ने अपने पहले मुकाबले में बृहस्पतिवार को हांगकांग को हराया था। प्रतियोगिता में कल ग्रुप ए में पाकिस्तान ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ओमान पर 93 रन की जीत दर्ज की थी। अब सबकी निगाहें कल होने वाले ग्रुप ए के उस मैच पर है जिसमें चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। और लवलीन उधर जापान के टोक्यो में आज से शुरू हुई 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज शाम पूजा 1500 मीटर दौड़ में भाग लेंगी। 18 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 19 सदस्यीय भारतीय दल 15 स्पर्धाओं में भाग ले रहा है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज भाला फेंक में पदक के बड़े दावेदार हैं। और चलते चलते ये बात भी हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ब्रिटेन के लिवरपूल में जैस्मिन लांबोरिया और नूपुर श्योरण विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं।
धन्यवाद निखिल खेल जगत के तमाम खबरों की जानकारी देने के लिए। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि विकसित भारत के युवा संवाद नेता युवा नेतृत्व वाले लोकतंत्र का एक सच्चा उदाहरण है जो दृष्टि को आवाज में और आवाज को प्रभाव में बदल देता है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में श्री मांडविया ने बताया कि आज से शुरू हो रही क्विज प्रतियोगिता अगले महीने की 15 तारीख को समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि ये प्रतियोगिता माय भारत पोर्टल पर उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये मंच विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में युवाओं की प्रतिभा और क्षमताओं के उपयोग के लिए तैयार किया गया है। नवीन और अक्षय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा है कि भारत हरित हाइड्रोजन नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने को तैयार है। नई दिल्ली में कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन कई क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करेगा और नए व्यापार क्षेत्र खोलेगा तथा एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की राह पर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल के अधिकारियों से मुलाकात की। ये मुलाकात व्यापार मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्रता से संपन्न करने के प्रयासों के अंतर्गत हुई। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्ष एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मणिपुर में विकास के लिए शांति सर्वोपरि। उन्होंने सभी संगठनों से अपने सपनों को पूरा करने और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए शांति के मार्ग पर चलने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम के आइजोल में बैरबी सरांग नई रेल लाइन सहित 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा पूर्वोत्तर देश का विकास इंजन बन रहा है। प्रधानमंत्री ने 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों सरांग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सरांग कोलकाता एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। कर्नाटक के हासन जिले में गणपति विसर्जन जुलूस में एक टैंकर के टकराने से 9 लोगों की मौत। रूस के कैमचटका क्षेत्र में 7.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी गई। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी हांगकांग ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।